तो सूर्य होने के कारण इनमें अपने भक्त पर स्नेह भी देखा गया इनके जीवन में, वो है राजा रघुगढ़ पर अपने कई जन्मों का अनुभव ज्ञान भक्ति वैराग्य इन्होंने राजा रघुगण को दिया, यह है स्नेह। और ऐसे व्यक्ति पर इन्होंने स्नेह किया जो इनसे पालकी ढोआया, तो जो शिष्य बनने वाला था पहले इनको डांटा, मारने की धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया, अगर ठीक से चलो नहीं तो मैं जमराज की तरह तुम्हारी मरम्मत कर दूंगा, और वो शिष्य बना इनका, उस पर एक कृपा किए। अब दिखाया जा रहा है कि मान अपमान में किस तरह वो सहम थे, तथा माना अपमान मरण में तो घबराए ही नहीं, मान अपमान का तीखे वचनों का भी कोई असर नहीं होता था। और वास्तव में इनमें क्या ज्ञान था, तो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि चुपचाप छोड़ना ठीक नहीं, इनसे कुछ बुलवाना चाहिए, इससे कुछ बुलवाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप चले जाएंगे तो जगत को लाभ क्या होगा। वो बोले भी थे राजा रघुगण से, तो जब भरत जी की जो उक्ति है, इनका जो अनुभव है, वह रत्न है भागवत में, उसे एक ही व्यक्ति को इन्होंने दिया बस। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक ही व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया, लोकनाथ गोस्वामी को, तो इन्होंने एक शिष्य बनाया, एक राजा, और वह भी इनके समान दूसरा भागवत परमहंस हो गया। वो राज्य करने नहीं गया, रास्ता में मिला और वहीं से फिर चल मन गंगा जमुना तीर बस वहीं से राज नहीं किया चला गया। यह प्रसंग चालू किया जा रहा है, ऐसे ही हमेशा कृपालु स्वभाव थे, अपने भाइयों पर भी कृपा किए, बहुत काल तक उन्हें अपना संग दिए, लेकिन मेरे जो गुणी थे संसार का वैभव कमाना खाना भोगना उनको रुचिकर था, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं दे पाए। चोरों पर भी कृपा किए, चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं क्या कृपा किए, तो पता नहीं वो किसी जन्म में अपनी देवी का दर्शन पाते या नहीं, लेकिन उनके कारण दर्शन हो गया पक्षा, और अपनी इष्ट देवी के हाथों से मारे गए तो दूसरे जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा तो भगवान का भक्त बनेंगे, ये भी व्यवस्था इन्होंने कर दिया, तो उन पर भी कृपा किया। ऐसे कौन पीड़ियात और चोर से आदि देकर पोसने वाले भाइयों पर भी इन्होंने कृपा किया, चोरों पर कृपा किया, और सत्वगुणी जीव राजा रघुगण जो भगवान के भक्त थे उन पर कृपा की, वे पात्र थे, योग्य पात्र थे ज्ञान भक्ति और वैराग्य के, इसीलिए उनको इन्होंने पूरा पूरा कृपा से सींच दिया, यह दिखाया जा रहा है। तो राजा रघुगण सौवीर और सिंधु देश के राजा थे, यह सिंधु देश इस समय पाकिस्तान में पड़ता है और सौवीर का कुछ हिस्सा राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। तो वहां से राजा रघुगण गंगा सागर जा रहे थे, किस लिए, सत्संग करने के लिए जा रहे थे, इसी से उनकी महिमा समझिए। यहां बंबई में इसी अंधेरी में रहने वाले राजा लोग भागवत सुनने नहीं आ रहे, और वो पाकिस्तान से सिंधु देश से जा रहे, वो एक सिंधी थे अथवा गुजराती होंगे जो भी हो, राजा रघुगण या राजस्थान, तो वो जा रहे थे गंगा सागर। कितनी लालसा होगी उस राजा को जो भगवान कपिल देव से मिल करके सत्संग करने के लिए, शास्त्र चर्चा भगवान की भक्ति सीखने के लिए जा रहे, इस प्रकार की जिज्ञासा होना राजाओं के लिए तो यह असंभव बात। लेकिन राजा रघुगण इतने पवित्र थे, भगवान के भक्त थे, उनके अंदर ये लालसा तो जा रहे थे, लेकिन राजा थे इसलिए कुछ रजोगुण भी इनमें था, और इनको ये विश्वास था कि जो आत्मा इस समय राजा है वो हमेशा राजा रहता होगा और जो इस समय नौकर है वो हमेशा नौकर रहता है। व्यवहार इतना जटिल है कि व्यवहार में रहते रहते ही अभिनिवेश आ जाता है, पद पोजीशन पर रहने से मनुष्य के मन में भ्रम हो जाता है कि यही मेरा स्वरूप है। जिस दिन वो पद से हटता है तब पता चलता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं। जब तक पद पर रहता है वो अंधा हो जाता है, नहीं समझ पाता। तो राजा भक्त थे, सत्वगुणी थे, लेकिन फिर भी राजा थे। किसी को दंड देना, टैक्स इकट्ठा करना, शासन करना, इस व्यवहार में रहते रहते उनको ये भावना थी कि मैं राजा हूं। और इस कारण से उस समय चलो वहां से उतनी दूर से, तो किसी को भी रास्ते में पकड़वा लेना और पालकी में जोत देना इनको खेल बताइए। गुणी वेतन के इतना बड़ा भक्त है, सत्संग करने जा रहा है, लेकिन किसी को भी पकड़ करके पालकी में जोत दे, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सत्संग है? ये उनमें था दोष। सुखदेव गोस्वामी अथा शब्द से पुनः चालू कर रहे हैं कि अथा सिंधु सवीर पते रहु गणस्य ध्वजत इच्छुमत्यस्तते तत्कुल पतिना सिविका वाह पुरुषान्वेषण समय दैवेन उपसाधिता सब द्विज ग्रह उपलब्ध। तो राजा रहुगण जा रहे थे, जाते जाते पालकी उनकी चल रही, पालकी पर चल रहे थे, पैदल नहीं चलते। सत्संगी महाराज पैदल नहीं चल रहे थे और ऐसे लोगों को पालकी में लगा रहे थे जिनको कभी वेतन दिए नहीं और न देते थे। इनका अनुमान था कि मैं राजा हूं, बाकी सब मेरी प्रजा है, इनका धर्म है मेरी सेवा करना। तो सिविका ढोने वाले, सिविका मतलब डोली, आंदोलिका कहते हैं उसको संस्कृत में, या सिविका हम लोगों के बिहार में उसको डोली कहते हैं। डोली मतलब जो डोलती रहती है, आंदोलित होती रहती है। डोली या सिविका उसको आंदोलिका कहते हैं। उसमें चढ़े थे, बड़े आराम से चल रहे थे, हिलते हुए जुलते थे। और पालकी ढोने वालों को एक बार ट्रेनिंग देता था वो, जो उनका पियादा था, मालिक था, मतलब नौकरों का मालिक, तो वो उनको ट्रेन करता था कि ऐसे चलना है, इस तरह से चलना है, राजा जी को थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से चलना। वो बेचारे डर करके बिल्कुल ट्रेन एक साथ पैर उठाते थे, चलते थे। कोई कष्ट राजा को ना हो। तो अकस्मात एक कहार बीमार पड़ गया। बीमार तो पड़ेंगे, सबको पड़ना था, उतना दूर से ढो करके आ रहे थे। बीच बीच में बदलता भी था, लेकिन बीमार पड़ने पर बदलता था। ऐसे में वो तो बेचारे ढोते रहते थे, ढोते रहते थे, पसीना से तर शरीर रहता था, और अब क्या करें, ढोते। तो चलते चलते राजा रहुगढ़ इच्छुमती नदी के तट पर आए। पता नहीं है नदी कहाँ है। इच्छुमती भारतवर्ष में एक नदी है, उसके तट पर आए। तो कहार बीमार पड़ गया, तो जो कहारों का मुखिया था वो जोहने लगा आदमी कि कोई आएगा ढोएगा। बहुत दल भगवान कृष्ण की इच्छा से अथवा राजा रहुगण के सुकृत से, उनके भाग्य से सौ द्विज वरह उपलब्ध, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ प्राप्त होंगे। ठीक उस तरह से कह रहे हैं जैसे चोर लोग उस पश आदमी को खोजते खोजते इनको पाए थे, ऐसे ही कहार खोजते खोजते ये मिल गए। मिल गए तो देखिए, तो राजा वैसा व्यवहार किया था, इसीलिए उनका जो नौकर था, नौकरों का हेड था, वो भी वैसा ही था। तो गया देखने लगा, ये सब पीवा तो बहुत मोटा आदमी, मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी है, ये सब पीवा और युवा, बिल्कुल युवक है। संघनन अंग, शरीर छू करके देखा तो कहा गठीला अंग है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो गोखर वो धुरम बोधू मिला निकले, ये तो गो माने बैल और खर माने गधा है, तो बैल और गधा की तरह बोझा ढो सकता है, ये तो बहुत अच्छा मिल गया। वो दूसरे कहार के बीमार होने से जो थोड़ा रंज हुआ था, खीन हुआ था, उससे और अधिक प्रसन्न हो गया, ये तो अच्छा मिल गया ढोने के लिए, ये तो गंगा सागर पहुंचा कर कहीं रहेगा, इसको तो कोई थकावट नहीं है। भगवान कपिल देव के आश्रम तक पहुंचा देगा। मुझे तो ये भी कहा कि हम तो कहते हैं कि अकेले उठा करके चलेगा, इसको क्या कहा, मैं इसका शरीर इतना मजबूत है कुछ कहना नहीं। मैंने अच्छा देखा, कहा वो जो मुखिया था वो कहा कि गोखर वध धुरम वधु मलम, ये तो बैल और गधा की तरह बोझ ढोने में समर्थ है। तो पूर्व दृष्टि कहीं तो सदृष्टि कहते हैं कर्म मूल्य के बिना ही जिससे कर्म कराया जाए, वे बिगार। तो जैसे बिगार में पहले लोगों को पकड़े थे वैसे इनको भी पकड़ करके लगाए। तो चलो 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 तो भाई कुछ नहीं पूछते, कहाँ घर है, किस काम से वहां आया है, क्या है। आज के युग में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं कर सकता है। गली उसे पकड़ करके कहे चलो 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 एक काम करो एक काम, उस पर भी केस हो जाएगा। लेकिन राजा रहुगण करे जो गुण देखिए, तो बस चलो 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 चलो। और अभी उसके योग्य नहीं थे लेकिन खड़े हो गए, खड़े हो गए तो बोल नहीं रहे थे, चुपचाप थे। तो उन लोगों ने सोचा कि गूंगा है बहरा है लेकिन इससे क्या मतलब, बैल भी तो बोलते नहीं लेकिन बोझा ढोएगा ही। तो वो जो भी कहे देखो जैसे ये ढो रहे हैं ऐसे चलो बता दिए कैसे, जैसे ये ढो रहे हैं ऐसे चलो, क्या है ये मतलब बदमाशी है लोगों को। कोई मनुष्य कहीं पड़ा हुआ है किस मूड में कैसे है और उसको बस जोत देना, और ये सत्संग करने वाले की तरफ सत्संग करने जा रहे हैं भगवान के पास। पूर्व दृष्टि गृहित सह गृहित असभम अतदरह हुआ, ये ढोना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। वास्तविक बात थी कि उन कहारों का थर्ड क्लास के आदमी का संग नहीं चाहते, इस कारण से वो पल के ढोना नहीं चाहते। लेकिन प्रसभम जबरदस्ती खींच करके लगाए, चलो उठाओ करते चला कर दिए। वह शुभकाम सा महानुभाव, इन महानुभाव थे, जबरदस्ती पालकी में लगाए जाने पर भी उनमें क्रोध नहीं हुआ, क्रोध का अभाव होने से इनको महानुभाव कहा, महाअनुभाव, जिनका महान प्रभाव। धोने लगे तो धोने लगे तो ये थे वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, जन्म से ही दयालु, तो ये केवल यीशु मात्र देखते थे। यीशु कहते हैं बाण को, बाण चार हाथ का होता है, ये धनुष चार हाथ का होता है। यीशु मात्रा व लोक गते प्राणी हिंसा परिहार्थम यीशु मात्र प्रदेशा व लोक कश्य अनुपश्चात या गति स्पष्ट है। तो बाण की जितनी लंबाई होती है पता नहीं क्या लंबाई है, उतना ही दूर पृथ्वी पर देखते थे। यीशु मात्रा व लोक गति, उतना देख करके तब उनकी गति उपाय रुचता था, वे इधर उधर नहीं देखते थे, जमीन पर देखते थे, भूमि पर देखते थे। क्यों हिंसा परिहार आया, कीट पतंग चींटी आदि मरने न पाए, इसके लिए वे देख करके चलते थे। देख करके चलने में पुरुष गति न समझने का ही था, अन्य पुरुषों के साथ इनकी गति का मेल हुआ नहीं। और वे लोग चलते देते तो सब शूद्र थे, साबा साबा सब क्या करें, वो कीड़े मकोड़े पिसलते हुए जा रहे। लेकिन ये तो ब्राह्मण थे, दयालु थे, और ये किसी भी कीट पतंग को मारना नहीं चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते, तो देख करके चलते। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कीड़ा इनके आगे पड़ता था, पैर बढ़ाने में देख लेते थे कि मेरा पैर उस पर पड़ जाएगा, तो ये पीछे खींच लेते थे पैर को, धीरे से डालते थे, उतना देर से जितना देर से वो लोग चल रहे थे उस देर से पैर नहीं डालते, वो थोड़ा इधर रुक जाते थे, अपना छलांग लेते थे, खास करके रोकते थे, अथवा छलांग लेते थे कभी कभी तो डोली हाथ से करती थी, हिलती थी पालकी, जर्किंग हो रहा था बहुत भारी, अथवा कोई कीड़ा ऐसे सामने पड़ गया तो उसको बचाने में ऐसे हो जाते थे, तो पालकी कभी इधर होती थी, कभी उधर होती थी, कभी पीछे हटती थी, कभी आगे झोंक हो रहा था, तो पुरुष गति न सम्यक आही था। तो अब तक तो राजा बड़ा स्मूथली आ रहा था, आनंद से आ रहा था, और जब पालकी हिलने लगी इस तरह से, तो राजा पालकी में बैठे बैठे कहा, जगह समय गति न समाहिता पुरुष गति तदा विषम गतम से काम रहो गणित धार जा पुरुषम अभिवहता आह अभिवहता पुरुषम, जो ढो रहे थे बेचारे बड़े कष्ट से, उन पुरुषों से बोला, हे ओधारा अरे ढोने वालों, साधु अतिक्रमता ठीक से पैर डालो साधु अतिक्रमता अपने पद विच्छेद ठीक से करो, क्या गलती हो रही है सरकार, मानो वे लोग पूछे तो कहता है किम इति विष्णुम उह्यते यानम, ये यान नरयान मतलब काल की ये विषम क्यों चल रही है, इसे मतलब तुम ठीक से पैर नहीं रख रहे हो, अब तक तो बहुत आराम से लाए, क्या हो गया, ठीक से चलो, वो क्रोध में नहीं था उस समय, स्वाभाविक ही कहा क्यों बोली हिल, क्यों पालकी हिल रही है, तो ठीक से चलो, तो इतना कहा तो जो और ढोने वाले थे वे तो बहुत डर गए, वे बहुत भयभीत हो गए, राजा को जानते थे कि इतना दूर से जो मार रहा है पालकी ढोवा रहा है तो निकलते ही पेट बरसाने लगेगा, तो वे तो बेचारे डर गए, डर गए तो उन्होंने सोचा कि राजा से सही सही बता देना चाहिए, नहीं तो एक दिशा से सबको मारना चालू करेगा जेल में ऐसे लोगों को मारा जाता है अगर कोई एक आदमी गलती करता है तो कैदियों को सबको पीटा जाता है ऐसा लोग कहते हैं, जिससे कोई गलती न कर देता है डर गए, अथत ईश्वर बचा सोता लंघन उपाकरण उपाय तुरीय संकित मन सा, उपाय तुरीय तुरीय का अर्थ चौथा, चौथे उपाय से डर गए, राजा के पास चार उपाय होता है किसी को ठीक करने का, इसको राजनीति कहते हैं, शाम नीति दाम नीति भेद नीति और दंड नीति, दंड नीति चौथी नीति है, लोगों ने सोचा कि तो चौथी नीति अपनाएगा, बेट मारेगा जूता मारेगा मारते मारते बहस कर देगा, राजा वो लोग इससे भयभीत हो गए क्योंकि ईश्वर बचा सुन उनके लिए ईश्वर था, ईश्वर का वो दंड देने में समर्थ यशवान, वो अपने ईश्वर की बात सुन करके भी सोपालंभन उपालंभन मैंने उलाहना दिया, राजा क्यों पालकी हिल रही है, इतना ही नहीं कहा वार्निंग भी दिया क्यों पालकी हिल रही है, और दूसरा वार्निंग दिया साधु अतिक्रम पर ठीक से पद विन्यास करो, दो दो चेतावनी दिया, तो वो सुनना भी चाहता था क्यों पाल की हिल रही है, तो ये लोग भयभीत होकर के और उसके संकित मन से मतलब दंड के भय से विज्ञान विज्ञापन बहुत विज्ञापित किए, विज्ञापन भी बताए राजा को ठीक ठीक बता दिए, जिसे ये लोग बच जाएंगे और मोटा वही मारा जाएगा चाहे कुछ भी, उन्हें अपने को बचाने के लिए वो पूरा बयान दे रहे कि क्या बात, तो वो कहते हैं न बलम नरदेव प्रमत्ता, पालकी उनके कंधे पर है, जब भरत जी भी अभी पालकी कंधे पर लिए और पालकी को कंधे पर लिए लिए वो लोग कह रहे हैं हे नरदेव हे मनुष्यों में भगवान सरकार बलम न प्रमत्ता, हम प्रमत्त नहीं हैं, हम सावधान हैं, भगवान भवन नियमानुपथ आप जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं, हम आपके नियम के अनुसार चल रहे हैं, हम प्रमत्त नहीं हैं, साधु एवं बहाम हम लोग बिल्कुल ठीक बहन कर रहे हैं, हम लोग ठीक से ढो रहे हैं, तब पूछा कि तब यान विषम क्यों हो रहा है, जब सब ठीक से ही धो रहे हो ठीक से पद रख रहे हो तो पालकी हिल क्यों रही है, तब लोग कहे अयम अधुना एवं निजुक्ता, यह अभी अभी लगाया गया है, जब भरत जी को दिखा कर कहते अयम राजा को दिखा रहे हैं वो देख करके इसी को जो भी दंड देना होगा मारना होगा मारेंगे, तब ये ठीक से चलने लगेगा। दिखा करके कह रहा है अयम अधुना एवं निजुक्त, यह अभी अभी निजुक्त हुआ इसलिए यह थका भी नहीं। अयम अधुना एवं निजुक्त से तात्पर्य हो रहा है कि सरकार हम लोग को सिंधु देश से ही लगे, हम लोग थके हैं फिर भी ठीक से चल रहे हैं, और यह नालायक अभी देता गया लेकिन ठीक से नहीं चल रहा, अगर धीरे धीरे चल रहा है तो शीघ्र नहीं चल रहा। उनका भी भाग्य था कि जब भरत जी के साथ लगे थे, अब यहीं से फ्री हो जाएंगे, अब उनको दहित होना पड़े। लेकिन जब भरत जी के उपदेश को कुछ भी नहीं समझे, बिल्कुल भोका थे वो थर्ड क्लास के आदमी, वो उनके उपदेश को नहीं सुने भी, सुने भी नहीं होंगे, समझे नहीं, तो वे कह रहे हैं कि अधुना एवं निजुक्त, अभी अभी लगा है इसलिए थका भी नहीं है, फिर भी न द्रुतम ब्रजति, अब तेज नहीं चल रहा है, हम लोग थके हैं बहुत दूर से लगे हैं फिर भी तेज चल रहे हैं, और यही पाल की खींच रहा है ये तेज नहीं चल रहा है। और इसके साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी शिकायत कर दिया कि अनेन सह वयम ओढ़ुम न पारे आने, सरकार हम लोगों ने देख लिया इसके साथ हम लोग ढोने में पार नहीं पाएंगे। इसके द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप इसको पीटेंगे भी तभी ये सुधरने वाला नहीं है, ऐसे पीटना चाहिए इसको लेकिन पीटने के बाद भी सुधरेगा कि नहीं कोई आशा नहीं, अन्यथा ये लोग कहते कि आप इसको जब पीटिएगा तब हम लोग इसके साथ धो सकते हैं। स्पष्ट कह दिए कि सरकार इसके साथ हम पाल के धोने में पार नहीं पाएंगे, अनिल सह वो धुमधुम को धोने में बनना पारे आना, हम नहीं पार पाए, हमसे नहीं धोया जाएगा इसके साथ। तो इस वक्तव्य में यह भाव छिपा था कि आप किसी और से धोआइए, और को लगाइए और इसको छोड़ दीजिए या पीटिए को, इनके कहने का वक्तव्य यह था, ये कंप्लेन किए। तो राजा रघुवंश राजनीति का पंडित था, तो राजनीति में बहुत पारंगत, उसने सोचा कि आज एक व्यक्ति इस तरह से नहीं ढो रहा, गलती कर रहा, अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो जो और ढोने वाले हैं वे भी बारी बारी से यही काम चालू करेंगे, भाई ऐसा करने से फ्री हो जाते हैं। वो सोचा, अथवा आज एक आदमी पालकी हिला रहा है और मैं उसे यदि क्षमा कर देता हूं तो ये सब भी हिलाना चालू करेंगे, और हिलाते हिलाते कहीं किसी पुल पर से किसी नदी पे भी फेंक देंगे, ये सारे वर्कर एक हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो राजा था, बहुत दूर की बात सोच लिया। उसके सामने समस्या आई ना कि हम करें क्या, अगर उसको मुक्त करते थे तब और सभी यही चाल चलते, ऐसा करने से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम भी ऐसे चले, राजा हमको भी छोड़ देगा, कहेगा कि ये इसके लायक नहीं, अथवा वो ये सोचता कि छोड़ दो चलने दो, जैसे चल रहे हैं तो वो लोग भी वैसे चलते। तो राजा ने सोचा सांसर्गिको दोष एवं न्यूनम एकस्या तो सर्वेशम सांसर्गिका नाम भवितुम अर्हति, ये नीति जो सांसर्गिक दोष होता है मतलब एक के संग से दूसरे में जो दोष आना संभव होता है तो एक का दोष सब में आ जाएगा, वो सोचने लगा। उसको भी बहुत दूर जाना था और अपने राज्य से बाहर हो चुका था, परदेश कलेश नरेशन को, राजाओं को ही परदेश में कलेश होता है, बहुत सोचना पड़ता है, राजनीति से हमेशा चलना होता है। श्रीपद शंकराचार्य ने लिखा है कि हमेशा सोचना चाहिए हमारा कौन मित्र है, हमारा कौन असली दोष है, हमारी आय कितनी है, हमारा व्यय कितना है, सब विचार करके चलना चाहिए। राजा था तो क्या, लेकिन वो भी अपनी रक्षा की बात सोच रहा है। तो सोचा कि एक आदमी का दोष करने जा सकता है, ये सभी बगावत कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। अब सबसे भारी भय था राजा को कि ये चल रहे हैं, अगर ये अपने प्राण का मोह छोड़ दे तो हमको तो कहीं नहीं मार सकते। कहीं मान लीजिए बहुत ऊंचा नदी पर पुल पड़ा और चारों मिल करके पालकी उठाकर फेंक दी तो मैं तो गया, इनका पद भले हमारे मंत्री करते रहेंगे लेकिन हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि बेहतर है कि इसको सुधार कर। राजा राहुगढ़ यद्यपि उपासित वृद्ध ज्ञानियों की उपासना किए थे, उप आसन में बैठे थे, उनके निकट बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किए थे, भक्तों के साथ रहे थे, इन फिर भी राजकाज करने के कारण रजोगुण से ढक गए। इनका जो निसर्ग था, निसर्ग कहते हैं स्वभाव को, इस प्राकृत जगत में प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वभाव होता है। सर्ग का अर्थ होता है जन्म और निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। राजा है तो राजा जैसा स्वभाव बन जाता है, भिकमंगा है भिकमंगा जैसा स्वभाव बन जाता है, कुछ बिच्छू का अलग स्वभाव है, सांप का अलग स्वभाव है। तो निसर्ग का अर्थ है स्वभाव। राजा रहते रहते इनका स्वभाव राजा का हो गया था, तो इस स्वभाव ने बलात्कृत इनको बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया। यदि वो स्वामी ज्ञानी थे और ज्ञानी भक्तों की उपासना किए थे, भक्तों के पास बैठे थे, सुने थे, लेकिन फिर भी ये भाव आ गया कि मैं राजा हूं। उस भाव ने, उनके स्वभाव ने बलात्कार किया इनके साथ, इनको अपने अधीन कर लिया। और ईषद उत्थित मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हो गया, नहीं ज्यादा क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है। जब कहारों ने शिकायत किया जटभरत जी की, तो जटभरत जी के प्रति राजा थोड़ा क्रोध हुआ, ईषद उत्थित मन में, मन मन क्रोध, और वह बोला। किनसे बोला? जिनका ब्रह्म तेज स्पष्ट नहीं था, वो नहीं जानता था कि एक ब्राह्मण है और वैश्य, राजा को पता नहीं, क्योंकि इनका रूप रंग ऐसा था कि कोई भी भ्रम में पड़ जाता कोई नहीं समझता। जात वेद से मिला रजसावर्त में कहता, जैसे भस्म से ढकी हुई आग हो, उस तरह से इनका ब्रह्म तेज ढका हुआ था, नहीं जानता है। उसकी मति रजोगुण से आवृत थी, मारना डांटना शासन करना ये रजोगुण है, भोग भोगना, तो उसकी मति आवृत थी रजोगुण से, वह इस प्रकार बोला। देखिए ये है रजोगुण। रजोगुण में और तमोगुण में मनुष्य दूसरे के दुख को नहीं समझ पाता। राजा को पालकी हिलने से दुख हो रहा है, लेकिन पालकी जिनके कंधे पर है उनके दुख का इसको कोई पता नहीं, उनको कोई दुख नहीं है। लगता है पत्थर के बने हुए हैं, उनको कोई दुख नहीं है। और इस सरकार को इनको हिलने से, पालकी आंदोलित होने से दुख हो रहा है। इस तरह के लोग हो जाते हैं रजोगुण। इस तरह का दृश्य हम लोग सब जगह देखते हैं। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट क्लास एसी में चलते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि हमारा यही स्वभाव है, हमारा यही स्वरूप है, और बाकी लोग सेकंड क्लास के जनरल कोच में फंसे जाएं, खड़े जाएं, कोई नहीं। लेकिन हमारा स्वभाव है, हमारा ये स्वभाव, ये रजोगुण है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मनुष्य को ऐसे नहीं चलना चाहिए और उसे भी सेकंड क्लास में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्वभाव हो जाता है। फिर यदि वह आदमी सेकंड क्लास में न चल पाए, बाध्य हो जाए फर्स्ट क्लास एसी में चलने के लिए, तो इसका मतलब वो रजोगुण में। सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति इस तरह से बाधित नहीं होता, वो तो किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहता। तो ये सोच रहे थे मैं राजा हूं और उनसे बोले। आक्षेप करते हैं, व्यंग वचन बोल रहे, अहो कष्ट, क्या कहा जाए, बहुत कष्ट में पड़ गए हैं आप, बहुत दुख हो रहा है आपको। व्यक्तम उन परिश्रम का, व्यक्त मन स्पष्ट है, ये छिपी हुई बात नहीं है कि आप बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, एक पद आपसे चला नहीं जाता, और वो बिल्कुल थके नहीं थे, कभी भी थक नहीं सकते थे, वो तो